सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा की पूर्व संध्या पर इथियोपिया में भारतीय राजदूत अनिल कुमार राय के साथ आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की विशेष बातचीत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच रहे हैं। वहां की राजधानी एडिस अबाबा में वो यहां के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इस पर बात करने के लिए इथियोपिया में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी की ये यात्रा है वो भारत के साथ इथियोपिया के संबंधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोतागणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री जी के इथियोपिया दौरे का क्या महत्व है, तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि लंबे समय के बाद 2011 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इथियोपिया दौरा है। और इस विशेष दौरे में हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जिन विषयों पे दोनों देश की आम सहमति है उस पर चर्चा हो और इसे हम आगे लेकर के बढ़ सकें। आपको ये ज्ञात होगा कि भारत की प्रबल समर्थन के वजह से 3 वर्ष पहले इथियोपिया ब्रिक्स का मेंबर बन सका। तो ब्रिक्स एक हमें नया प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से दोनों देश अपने संबंधों को रीजनल कोऑपरेशन के लेवल पे आगे लेकर जा सकते हैं। जहां तक इथियोपिया में प्रधानमंत्री जी के आने का जो वक्त है, ये ऐसा दौर है जिसमें इथियोपिया में नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, नए जो सेक्टर्स हैं उसमें ओपनिंग अप हो रहा है। तो ये भारतीय उद्योग और उद्योगपतियों निवेशकों के लिए एक अच्छे अवसर का एक शुभारंभ है। और निश्चित तौर से यहाँ पर इनकी जो सरकार है, शीर्ष नेतृत्व है, वो इस यात्रा को बहुत ही सकारात्मक रूप से देख रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के प्रधानमंत्री के बीच में आपस में भी एक बहुत अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग रही है। क्या ये दोनों देशों को, ये जो पर्सनल बॉन्डिंग है, दोनों देशों को संबंधों को मजबूत करने में एक अहम कड़ी बनेगी? और दूसरा, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत और इथियोपिया के बीच में बेहतर सहयोग की गुंजाइश बची है, बहुत ज्यादा सहयोग की, जहाँ पर संभावनाएं तलाश सकते हैं जिन सेक्टर्स में?
दोनों प्रधानमंत्री के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध है। उनके वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के अधिकतर जो सम्मिट्स हुए हैं उसमें डॉक्टर अबे अहमद जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने अफ्रीका और खास तौर पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका से संबंधित विषयों को रखा। अगर आप ये देखेंगे तो दोनों ही देशों के जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं तकरीबन सेम है। चुनौतियां भी, उसका स्केल अलग हो सकता है, लेकिन चुनौतियां भी तकरीबन एक ही तरह की हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस वजह से जो नई जो आर्थिक सुधार इथियोपिया में किए जा रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट हो या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में ओपनिंग अप हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स क्रिएट करने की बात हो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो ये सारे वो क्षेत्र हैं जिसमें कि दोनों देशों के बीच अच्छे सामंजस्य की गुंजाइश बनती है। अफ्रीका में इथियोपिया वो देश है जहाँ पे इसके जो मिनरल पोटेंशियल है, खास तौर पे ऐसे मिनरल्स जिसकी भारत को आवश्यकता है, दुनिया को आवश्यकता है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो, फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल होने वाले हों, इन सब के जो है मिलने के संकेत मिले हैं। एक यंग पॉपुलेशन होने की वजह से इथियोपिया भी आईटी और डेटा साइंस प्लस फ्रंटियर जो टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर कोशिश कर रहा है। तो जो न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसमें भारत ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, तो ये क्षेत्र जो है मजबूती से निकल कर आगे आएगा। इस देश में इनकी जो प्राथमिकता है इथियोपिया की, वो ये है कि युवाओं को अच्छे स्किल्स मिलें और वो रोजगार उपयोगी बन सकें, तथा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, उसमें जो है एक भारत जैसे देश का सहयोग मिल सके, ताकि इनकी जो युवा पीढ़ी है वो अपने सकारात्मक सहयोग से इस देश को आगे बढ़ा सके।
जब हम बात करते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की एक तरीके से आवाज बनने के लिए प्रयास कर रहा है लगातार, और अफ्रीकन यूनियन को G20 की टेबल के साथ लाने के लिए भारत ने बहुत प्रयास किया, और भारत की प्रेसिडेंसी जब 2023 में थी उस वक्त ही अफ्रीकन यूनियन भी साथ आया, तो अब जो ये यात्रा हो रही है उससे जो भारत एक ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनना चाह रहा है, उस मुहिम को, उन प्रयासों को कितना बल मिलेगा?
मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत ग्लोबल साउथ का ऑलरेडी एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है, और हम वो चुनिंदा देश हैं जो ये चाहते हैं कि इस अफ्रीकी महाद्वीप में जो भी विषय है वो अफ्रीका लेड, अफ्रीका ओन्ड और अफ्रीका ड्रिवन सॉल्यूशन की तरफ हम चले, न कि बाहर के जो आइडियाज हैं वो इस कॉन्टिनेंट पे डाले जाएं। ये 54 देशों से बना हुआ अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, इसमें जो एवरेज जो एज वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और आज 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है 2005 तक, और 1 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ ऐड होगा, तो पॉपुलेशन खुद ही एक इंजन ऑफ ग्रोथ होता है। इसके साथ साथ इस कॉन्टिनेंट की जो अपनी जो चुनौतियां हैं, यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व है वो वास्तव में अफ्रीका सेंट्रिक सॉल्यूशंस की तलाश में है। तो आपने सही बताया कि 2023 के G20 सम्मेलन में भारत इन्हीं उद्देश्यों के साथ, कि जहां पर अफ्रीका की चर्चा होती है तो अफ्रीकन यूनियन अपने विषयों को रखे, अफ्रीकन यूनियन अपने सॉल्यूशंस को रखे, तो इस पर जो है हमने प्रयास किया और अफ्रीकन यूनियन को हम मेंबर बनाने में सफल रहे। जो नया जो दौर है उसमें हमें कोशिश ये करनी है कि पिछले जो 4 G20 के प्रेसिडेंसी थी, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन 4 देशों के पास G20 की प्रेसिडेंसी रही, अब ये डेवलप्ड कंट्रीज के पास जा रही है, तो जो इन 4 वर्षों में जो हमारे प्रयास हुए वो डाइल्यूट ना हो जाए, वो हमेशा सेंट्रल एजेंडा बने रहें, और डेवलपिंग कंट्रीज की जो आवाज है वो हर मंच पर बुलंद रहे, यही जो है हमारे लिए नई प्राथमिकता है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीका यूनियन और अफ्रीका महाद्वीप के बाकी सभी देशों का समर्थन की आवश्यकता होगी।
इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है उसकी बैठक बहुत दिनों से प्रतीक्षित है, भारत में होने के बाद एडिस में भी उसकी बैठक पहले दिल्ली में हुई, फिर एडिस में हुई, अब बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा है, तो क्या ये जो भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है, दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठेंगे, तो क्या इस बैठक को लेकर के भी कोई बातचीत हो सकती है, कुछ इसकी तारीख तय की जा सकती है?
अफ्रीकन यूनियन एक संघ है जिसमें कि इथोपिया भी उस अफ्रीकी संघ का एक सदस्य है, और इन 54 देशों के सदस्यों में जो प्रेसिडेंसी है आज के समय में वो अंगोला के पास है। अफ्रीकन यूनियन ने ये अपने रिजोल्यूशन में पास किया है कि 2026 में भारत में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट किया जाए, तो इसके लिए चर्चाएं चल रही हैं, और एक प्रतिनिधि मंडल दिसंबर के पहले सप्ताह भारत होकर के आया है, तो ये एक विषय है जिसपे इस विजिट के दौरान विशेष चर्चा का प्रावधान नहीं रखा गया है, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के बारे में हम लोग बहुत सीरियस हैं, और 2026 में हम लोग जो अफ्रीकन यूनियन ने जो अपना रिजोल्यूशन पास किया है उसके आधार पर इस समिट को करने का पूरा प्रयास करेंगे।
बहुत से दुनिया के देश, बड़ी ताकतें जो हैं वो अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और स्ट्रेटेजिक, सामरिक और रणनीतिक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। भारत ने भी बहुत से देशों में अपने सहयोग के तरीके से, अपनी जो अन्य प्रयास हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रयास हैं, उनको लेकर के काफी काम किया है। ये जो यात्रा प्रधानमंत्री जी की हो रही है, इससे हमें पता है कि जो एडिस अबाबा है वहां पर भी, इथोपिया में भी भारत की तरफ से काफी मदद दी जाती है, तो वो जो एक मानवीय स्तर पर है और प्लस जो रणनीतिक स्तर पर सहयोग है, उस दृष्टि से कितनी ये महत्वपूर्ण यात्रा होगी, खासतौर पर भारत के अफ्रीका में जो रणनीतिक निवेश या अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास है?
आज का विश्व बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और हर जो देश है अपनी विदेश नीति, अपनी आर्थिक नीति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। जो भारत के लिए जो सबसे उसके पक्ष में जो बातें जाती हैं वो ये है कि यहाँ के जितने भी देश हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, किन्हीं भी देशों के साथ किसी किस्म का हमारा दुराव नहीं है, और हर जगह भारतीय समुदाय के लोग बहुत सारे जनरेशन से, 2-3-4 जनरेशन से यहाँ पे रहते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है बल हो गया। अब इन्हीं बल के आधार पर हमें जो आने वाले अवसर हैं उसको अपनी क्षमता के हिसाब से उसका हमें उपयोग करना है। तो आपने जैसे बताया कि क्या क्षेत्र हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग अफ्रीका में कंट्री के हिसाब से बायलेटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कॉन्टिनेंट लेवल पे, तीनों स्तर पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे क्या क्या हमारे प्रयास हो सकते हैं जिसमें कि हम सबसे एफिशिएंट हों और अपने जो सर्विसेज हैं बेहतर कर सकें। इसके माध्यम से मैं ये आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुआ था तो हमने, और सेकंड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में भी हमने ई अफ्रीका नेटवर्क की बात की थी। ई अफ्रीका नेटवर्क के माध्यम से हमने ई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की थी जो कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ था। तो उसी तरीके से ऐसे कुछ जो दूरगामी प्रयासों पे निश्चित तौर पे जो अफ्रीकन साइड से अगर हमें इसका आता है प्रस्ताव तो इन चीजों पर विचार होगा।
अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक तो प्रधानमंत्री जी स्वयं गुजरात से आते हैं, गुजरात से बड़ी संख्या में लोग इथियोपिया में भी हैं, कारोबार में भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो एक तो लोगों में कैसा उत्साह है प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर के, दूसरा भारत और इथियोपिया के बीच बरसों पुराने संबंध रहे हैं, व्यापार के भी संबंध रहे हैं, यहां तक कि जो प्रथम विश्व युद्ध में भी और बाद में कई अन्य सैनिक जो आए यहाँ पर युद्ध करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से, उसमें भी भारतीय लोग शामिल रहे और खासतौर पे जो यहाँ एजुकेशन सेक्टर था उसमें भी काफी संख्या में भारतीय रहे, तो ये जो संबंध है ये किस दिशा में अब आपको और संभावना दिखती है जहाँ बढ़ सकते?
आपने जैसा कि बताया कि गुजरात से अफ्रीका के जो पूर्वी तट है उसकी सबसे कम दूरी है, तो पहले जो लोग यहाँ पर आए भारत से वो गुजरात राज्य से ही थे और यहाँ पर अनेक शहरों में उनका बहुत बड़ी बसावट थी और वो बहुत बड़े ट्रेडर भी हुआ करते थे। समय के साथ साथ जो है बेहतर अवसर की तलाश में कुछ लोग चले गए और बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है वो अब गुजरात तक सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो मैं ये देखता हूँ कि भारतीय समुदाय में उनके आने को लेकर के हर व्यक्ति में बहुत अत्यंत उत्साह है और हर व्यक्ति अपने स्तर पर उनका स्वागत करने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां तक बात रही शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश के संबंधों का, तो एक दौर था जब प्राइमरी स्कूल से लेकर के पोस्ट डॉक्टरल तक के जो इंस्ट्रक्टर्स थे, टीचर्स थे, वो भारतीय मूल के ही थे, लेकिन समय के साथ हमने ये अपनी जो स्किल्स है इथियोपियंस को ट्रांसफर कर दिया और अब ये संख्या जो है घट करके 2500 से 150 के आसपास है। निश्चित तौर से शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है दोनों देशों के संबंधों में और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे तकरीबन 45 विश्वविद्यालय हैं जिसमें से 20 विद्यालय के या तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या रजिस्ट्रार वो भारत से पढ़े हुए हैं। तो ये यानी हमारे यहाँ के वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार के बराबर होंगे, तो ये बताता है कि हमारा संबंध कितना गहरा है। और आज अगर किसी भी 50 वर्ष से ऊपर के किसी भी इथियोपियन से आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, ये तीन विषय में से कोई ना कोई विषय पढ़ाने वाला उनका जो शिक्षक होगा वो भारतीय हो ही होगा। तो ये जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है इस जनरेशन के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के आगमन में इथियोपियन भी हम ही जितने उत्सुक हैं क्योंकि वो उन्हें अपना नेता भी मानते हैं।
सर, आकाशवाणी समाचार से आपने इतनी विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा को लेकर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा की पूर्व संध्या पर इथियोपिया में भारतीय राजदूत अनिल कुमार राय के साथ आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में